सुदृढ़ता कहीं निर्मल मन बनाओ, कहीं चित्त की शुद्धि कहा गया, अंदर बाहर एक बनो, शौच का बोला गया, मतलब अलग अलग नाम है। और हमारे यहाँ शुभेच्छा शुभकामना कई उसके नाम हैं, तो उसमें पहले बताया गया है कि आपके मन पर किसी के अभिप्राय का गलत असर न पड़ेगा। अच्छा पड़े वो चलेगा, किसी ने कह दिया गांधी जी ऐसे थे या फलाने थे, ठीक है वो जान लीजिए, लेकिन उसका असर नहीं होना, जानना अलग चीज है और असर का मन पर पड़ना। तो कहते पहले दूसरों के प्रभाव से मन को मुक्त करो। जैसे मान लीजिए अब मेरे सामने अक्सर प्रश्न आता है कि स्वामी जी लड़की की शादी है कैसे होगी, लड़के की शादी है कैसे होगी, नौकरी रहेगी कि जाएगी। तो उसमें कहा गया कि आज का जो कर्म आप कर रहे हैं उसे आप अच्छी तरह कीजिए, और जो कल आएगा उसे करेंगे। किसी ने आपकी प्रशंसा की वो तो ठीक है, लेकिन निंदा करने पर आप बहुत ही अंदर से व्याकुल हो जाते, क्यों मेरी निंदा किया, तो करेगा ही। तो हमारे यहाँ जो पहले यम की बात की गई, अहिंसा हत्या प्रहसन, तो उसमें यही आया। ये टेक्निकल बात आप समझें या समझने कोशिश न करें, लेकिन एक चीज है, जड़ भरत ने कहा है कि जैसे पेड़ है उसके विकास में ठंडी भी काम करती है, बरसात भी और गर्मी भी, पेड़ है। आइए आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ आ जाए बैठ जाए, थोड़ी जगह दे दूँगा, टाइम लेकर आए हैं ना, बैठ आओ। तो कहते हैं जैसे पेड़ है, अब देख लीजिए पेड़ एक जड़ है, तो इसके विकास में ठंडी भी है, बरसात भी है और गर्मी भी है। दूसरे ढंग से कहिए तो सहन सकती है। आज इतना बड़ा पेड़ हुआ फल देता है, तो हर साल ठंडी गर्मी बरसात सहन करता है तभी। तो कहते जड़ चीज के विकास में भी ठंडी गर्मी बरसात सहन करने पर हमें प्रगति की शक्ति मिलती है। इसी तरह से हमारे विषय में किसी ने कुछ कहा तो मन को हताश और निराश में करो, और किसी ने कुछ कह दिया तो क्रोध भी ना लाओ, गर्मी मतलब क्रोध भी ना लाओ। ठंडी का मतलब है कि हताशा निराशा नहीं आए, गर्मी मतलब है क्रोध ना लाइए। और बरसात का मतलब यह है कि कैसी भी हो, बरसात का मतलब है लोग कुछ बोले, पुकारे, कुछ भी करें। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ये आप लोग जानते हैं लेकिन मैं बताऊंगा, अगर आपको याद हो 84 कपिल देव उस समय वर्ल्ड कप लिया था, और वर्ल्ड कप न मिलने के कारण केवल एक रन बनाना था और एक गेंद थी, तो उस समय लोगों ने फील्ड में इतना शोर किया, केला फेंका, ये किया, बल्कि मेरी बेटियां बैठी हैं क्षमा करें, वहां के विदेशी हिसाब से कपड़े उतार करके लोग दौड़े, लेकिन किसी तरफ नहीं देखा। ये तो सुने होंगे आप लोग, सुने होंगे वही कि हमें अगर कुछ प्राप्त करना है तो चाहे आकर्षण है कि विकर्षण है, मतलब अनुकूलता है कि प्रतिकूलता, लेकिन हमें तो अपना अपना लक्ष्य लक्ष्य देखना है। तो इसी तरह से चाहे कोई फूल की बरसात कर रहा है कि पत्थर की बरसात कर रहा है, कुछ भी करे, लेकिन हमें किसी की तरफ देखने की
जरूरत
जरूरत नहीं, हमें उदासीन रहना है क्योंकि हमें तो आगे जाना है। तो ध्यान में भी यही बताया गया है कि जब आप एकांत में ध्यान करेंगे तो फिर विज्ञान आ गया। विज्ञान कहता है जिस पेड़ की जड़ अंधेरे में जितनी नीचे जाएगी पौधा प्रकाश उतना ही ऊपर जाएगा। अंधेरा नाम है अपने अंदर, जितना आप अपने अंदर जाओगे उतनी ही शक्ति आपके अंदर ज्यादा प्रकट होगी। अब घास है, घास बहुत नीचे नहीं जाती तो खत्म हो जाती है, पेड़ की जड़ें इतने नीचे जाती हैं कि हर साल वो कितनी देता है, मतलब ऐसा है। एक समझाने का तरीका है कि आप अपने अंदर जाइए, आप तो दूसरों दूसरों की तरफ जी रहे हैं, इसने मुझे ये कहा वो कहा, जब उससे कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान की पद्धति में एक आप आम की गुठली की बात ले लीजिए, कि पहले वो गुठली जमीन में अर्पित की जाती है तो उसका निकलता है, फिर उसको चारों तरफ खोद के निकाला जाता है, फिर अच्छी जगह आरोपण होता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को इतना ठीक करो कि किसी की हल्की बात सुन करके, हल्का आचरण करके हमारे मन पर कोई बुरा असर होना नहीं चाहिए। बता, एक उद्दालक की कहानी आती है, उद्दालक की कहानी में भी ये दृश्य है। उसके सामने अनेक दृश्य आए, बहुत कुछ हुआ लेकिन वो प्रभावित नहीं हुआ और सफल जो है व्यक्ति बना। अगर इसी तरह से आपको एक ऋषि मुनियों की बात का एक आधार जो है आपको बता दूं, देख लूं, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, ऋषि मुनियों का क्या है। और ये मेरी भी बात हो सकती है, आपकी भी हो सकती है सब। अगर आपको आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में तो अपने व्यवहार को ऐसा करें कि आपके व्यवहार को देख करके कोई दुखी
ना।
अपने आप दुखी होता है, होता है, लेकिन हम जानबूझ के दुखी ना करें। जैसे आजकल की बात बताएं, दुखी वगैरह पड़ोसी से थोड़ी लड़ाई हुई तो 4 लाख पेड़ लगा कर बिना जरूरत है कीर्तन करना शुरू करे, धर्म का नाम लेके। अब उसका बाप बीमार है, ऐसे जल करते हैं और हम तो आज हमें कीर्तन करना है। अब कोई बोल भी, बल्कि आपको बताऊं, ये आप लोग जो गणेश अनंत चौदश पे करते हो, साफ साफ लिखा है कि नाचने कूदने से ऐसा, वो जो समय है ना वो बहुत विकार का है, नाचने कूदने से आपके अंदर का विकार का रूपांतर होता है, लेकिन ये भी कहा है कि आपके नाचने कूदने से दूसरे में विकार न पैदा हो। अब आपको बता दूं, थोड़ा बहुत मेरा इतना परिचय नहीं है, इतने फेमस लोगों से परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि जब रासलीला या अम्बा जी की भेंट लोग गाते हैं या नवरात्रि का आता है, तो आपको बड़ी ही अंदर की बात बताना, जो बेटा बेटी नाचते हैं उनमें विकार नहीं आता, देखने वालों में आ जाता है, उनमें इतना विकार नहीं आता। इसलिए हमारे यहाँ ये तो सबसे बड़ी बात है कि नाचना कूदना सब कुछ है, लेकिन विकार है, हमारी कमजोरी है। और जब हम कमजोर हो गए तो फिर सफलता कैसे मिले, सफलता मिल ही नहीं सकती कुछ भी करें। तो ध्यान में देखना है, अगर आप मुक्तानंद जी के बड़ी सुंदर ध्यान पर पुस्तक है श्री चित्त विलास वो पढ़िए, उसमें उन्होंने बताया, हम तो आपको मौखिक बता रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा है। आप अगर किसी से बात कीजिए तो मन में इतना विकार नहीं है, लेकिन एकांत में जब अंदर जाएंगे तो जैसे खोदते समय कभी कंकड़ आता है, कभी पत्थर आता है, और ये पार करने के बाद पानी आता है, इसलिए आंख बंद करने पर जब अंदर जाओगे तो इतनी गड़बड़ी पैदा होगी कि उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा ठीक है, चित्तविलास उनकी पुस्तक पढ़िए। जो नहीं बात आज से 10 साल पहले जो घटना हुई है वो भी सामने आ जाए, जब से कोई मतलब ही आंख बंद करोगे, किसने क्या कहा, ये कहा, वो कहा, अब उसी से हटने के लिए ये कहा गया कि शुरू में जोर जोर से कीर्तन करो, परिक्रमा करो, शंख बजाओ, पाठ सुनो, चलो। चलने से हमारा शरीर स्वस्थ होगा लेकिन मन नहीं स्वस्थ होगा, इसलिए चलते समय क्या करो, भगवान का नाम, भगवान का नाम लो, ऐसा करो। आप दौड़िए, दौड़ने से आप स्वस्थ होंगे, लेकिन दौड़ते राम राम बोलो, ओम बोलो, कृष्ण बोलो तो मन भी, तो हमारे यहाँ जो पद्धति बताई गई, मन भी शुद्ध और शरीर भी शुद्ध, तन भी शुद्ध, और मन और तन दोनों जब शुद्ध होगा तो इतनी जबरदस्त ताकत पैदा होगी जो आप संकल्प करें उसका। अब देखो आप आए, मेरा विचार है, मेरा मन है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, विचार बहुत अच्छा है लेकिन हाथ में लगवा होगा तो, इसलिए मन का विचार साथ तन भी, तभी तो दूंगा। मेरा विचार है कि आपकी मदद करूं, मान लो कि कोई सड़क पर गिरा है, विचार तो बहुत अच्छा है कि उसको उठाऊं, लेकिन हम ही नहीं स्वयं उठ पाते तो
कैसे उठा।
हमारा विचार है कि सुबह आपको जल्दी जगाऊं, लेकिन हम ही नहीं जागे हैं तो
कैसे जगह
वो कैसे जगाएंगे, ये करेंगे। तो ये ध्यान में सबसे बड़े, अब ध्यान में क्या क्या बातें उद्दालक ने कहा है वो मैं आपको बताऊं। ये जो एकांत में भोजन की बात है उसका पूरा विवरण है, लेकिन हम भी खुले हम नहीं बता सकते, नहीं तो लोग कहेंगे कि स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। अन्न को देवता माना गया, अब हमें नहीं मालूम कि आपके क्या विचार हैं। अब देखिए उद्दालक क्या करता है कि अगर आपको किसी को समझने में तकलीफ हो रही तो आप अपनी जगह ठीक रहिए, और ये मैंने देखा है, बहुत सुंदर कहा है, आपने लाडू ले लिया, दाल भात ले लिया, एक आदमी की मन की प्रक्रिया बता रहा हूं, भले हाथ जोड़ का था, भले लाडू खा करके आप बीमार हो जाओ लेकिन परोसने वाले बनाने तकलीफ होगी, लेकिन जूठा छोड़ोगे तो, इसलिए सबसे पहले जो है कहा गया है कि भोजन करते समय अगर समूह में कर रहे हो तो थाली इतनी साफ होनी चाहिए कि वो देख करके किसी के मन में तकलीफ
नहीं।
और कई बार हुआ, कई बार लोग मुझसे भी कहते हैं, तो ये एक है। अब वहाँ क्या क्या आया, कई बार देखा है बड़े लोग भी थोड़ी भूल करते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कह सकता, उसके मन में दुख होता। चलो मैं आपके और भरत की बात कर रहा हूं, हम आपके साथ खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, मान लीजिए हम भरत जो है थोड़ा देर से खाते, धीरे धीरे खाते, और आप जल्दी खा के हाथ धो दिए तो आप देख लेना, कर बहुत कोई ऊंचा हो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बगल वाला हाथ धोए तो अच्छा
नहीं।
अच्छा नहीं लगता, या तो मुझे जल्दी करना पड़ेगा या तो भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने कई जगह अच्छे अच्छे लोगों को देखा, बाद में कहा कि ठीक है आप हाथ आपका जी जा जल्दी जाना है तो जाकर बेसन में धोइए, आपको थाली में क्यों धोना, दो आपको जल्दी जाना कहो भूल लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो उसमें कहा गया है पंजाब का नियम है, अगर आपको जाना है तो आप अपनी थाली उठा करके नल के नीचे रख के धो जाए, वहां छोड़ करके नहीं जाएंगे और थाली में हाथ, क्योंकि वहां संतों ने, आपने गुजरात में होता कि नहीं होता, वही थाली धोना शुरू शुरू कर देते जबकि बगल वाला खा रहा। अच्छा धोते समय क्या है, चाहे कुछ है थोड़ा तो पानी पड़ेगा, अब उसका मन दुखी हुआ तो फिर आया कि थोड़ा सा जहर जहर ही है, वो 1,000 लीटर दूध को जहर बना देगा। मतलब हमारे व्यवहार से कोई दुखी हुआ तो उसका असर तो हमारे पर बोलेगा तो नहीं, लेकिन
पड़ेगा।
जो है पड़ेगा। तीसरी चीज ये है, उद्दालन ने कहा कि इसके बजाय आप एकांत में खाओ, आधे घंटे में एक जो करना हो। लेकिन अगर समूह में भोजन करना है तो ख्याल रखना पड़ेगा कि अपने पड़ोसी का भी ध्यान, कि मेरे कारण वो दुखी नहीं होना चाहिए। और अन्न को जो है देवता के रूप में माना गया है, लोग कहते हैं कुत्ता खा लेगा या हम पंछी को दे देंगे। कहते हैं कि भारत के लोग हर चीज में भगवान देखते हैं, तो आप जूठा क्यों खिलाते हैं? आप कुत्ते को जूठा क्यों? इसलिए हमारे यहाँ है कि पहले उसको निकाल देंगे, फिर कहते हैं बच गया सर जूठा खाएगा, ये करेगा। एक तरफ आप कहते हो सब में भगवान है, दूसरी तरफ आप जूठा खिलाते हो। इसलिए हमारे यहाँ कहानी आई है कि पिछले जन्म में मैं बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन जूठा खिलाता रहा तो भगवान ने कागला बना दिया। काम काम कहिए और जूठा जूठा जो है खाई। आज एक बात बताता हूँ, कहानी आती है। एक आपको कहानी सुना दूँ, पुरानी है, मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, अपने ऊपर ही। मेरी ये दुकान है, मतलब अनाज की, आपकी है, भरत की है, ये है ऐसे। तो एक गाय आई, ना मेरी वही चीज है, अनाज है सब, ना मेरी दुकान पे आई, ना आपके, ना आपके, ना भरत के। और उसमें कहानी में है कि 10-12 दुकान छोड़ कर गई और सबकी दुकान एक जैसी है। महात्मा हंसने लगे। तो दुकानदार जो 10वीं वाला था, एक लकड़ी मारा गाय को, तो और हंसने लगे। कहे महाराज जी, ये गाय मेरा अनाज खा गई और आप हंसते हो। अच्छा ये बताइए, ये पहली दुकान पे क्यों नहीं गई, दूसरे पे क्यों नहीं गई, तीसरे पे क्यों नहीं गई, सभी थी देखती हुई गई, आपकी दुकान पे क्यों आई? अनाज अलग अलग होता तो दुकान पे क्यों गई? कहा बताइए। कहा 2 मिनट आंख बंद कर बताता हूँ। देखा कि पिछले जन्म में तू भी इसके खेत में से यही गेहूं चोरी किया था, तो गाय से जो है अपना हिस्सा ले जा। कमाल की बात। तो ये और बता दूं, ज्योतिष में भी आया, मैं देखा है ऊपर, जुड़वा भाई है, तारीख वही है, माँ बाप है, फिर भी स्वभाव में अंदर। हमने तो यहां तक देखा है जुड़वा भाइयों में कि एक माता पिता को मानता है, एक नहीं मानता। बहनों में भी देखा है कि एक अमेरिका पहुंच गए, बड़ौदा में सब जी। तो वो ज्योतिष कहता है ये बात नहीं है, ये कर्म का सिद्धांत है। पिछले जन्म में जिसकी आपने सेवा की है वो पुत्र बनकर सेवा कर रहा है, और जिस करोड़पति का खाकर लूटकर वापस नहीं किया वही आकर के इस तरह खर्च कर गिर लेगा। इसलिए दुख मानने की जरूरत कि स्वामी जी, एक लड़का तो बहुत ध्यान देता, एक नहीं देता। मैंने कहा पिछला जन्म नहीं ध्यान देता, आपने भी नहीं ध्यान दिया, आप रहे हो गए मैनेजर किसी मिल के, खाए हो गए चोरी से। अब ये है तो ये जाकर आप लोग ध्यान रखिए कि चाहे हम पिछले जन्म की बात नहीं जानते, लेकिन अन्न को देवता माना गया। मैं आपको बता दूं, आप चलिए मेरे साथ जसलोक हॉस्पिटल, बुरा न मानिए, लोग करोड़पति हैं, लेकिन मुझे पूछा जाता है महाराज जी अन्न कब खाऊंगा। अब डॉक्टर कहता है महाराज जी आप कुछ ना बोलना, क्योंकि इसके लीवर में सूजन है, ये खा ही नहीं सकता। गरीब की झोपड़ी में जाइए तो चने चबा के गुजारा कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं है। अब करोड़पतियों के यहाँ जैसे चलो मैं गया, महाराज जी के लिए ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, और वो कहते महाराज जी आप खाइए, मुझे तो नारियल का पानी पीने में भी तकलीफ है, नारियल का पानी पीने में भी तकलीफ है। तो एक थोड़ा सा अन्न का जो प्रभाव, इसलिए आप गीता वगैरह पढ़िए और उद्दालक ऋषि सुनिए, अन्न को देवता मानिए। देवता का मतलब क्या? इज्जत के लिए, जैनी लोग हैं बुरन मानिए, मैंने देखा थाली धोकर पी जाते, तो जैनी दूसरे कारण तकलीफ होगा, लेकिन रुपए पैसे से दुखी नहीं होंगे। जैनी जो है ना रुपए पैसे से, अच्छा जैनी लोग दुखी क्यों बने, मेरे सामने प्रश्न आया तो मैं थोड़ा आपको बताऊं। घंटा कर्ण जो है ये हनुमान जी का दूसरा नाम है, उनके यहां जो पद्मावती है वो हमारी अम्मा देवी है। अब साफ साफ लिखा है कि जैन हमारे बाद हुआ, मतलब हिंदुओं में से हुआ, तो उन्होंने करके हनुमान को घंटा कर्ण कर दिया। लेकिन मूल में लिखा है कि हनुमान की पूजा करने वाले को, हनुमान जी को मानने वाले को किसी भी तरह कैसे भी घर में मटन और शराब का सेवन नहीं। मैं आप सबसे कहता हूँ, यहाँ देखिए आप बिल्ली मोरा के बैठे हैं, बिलसार के, भरूच के बैठे हैं, आप अपने जन्म के बाद देखिए, अगर आप जब सोच संभाले हैं, आपके शहर में अगर 50 घर जैनी थे तो टूटते टूटते 2 घर हो गए होंगे। क्यों हो गए? हनुमान जी लिखा है अगर तुम शराब और मटन का सेवन करोगे तो जाग दूंगा। आज सुबह एक आए मेरे पास, कोई बात की है एक आम में, कहे स्वामी जैसा है, तो मैंने सीधे पूछा कि भाई तेल में छोटा आपने दिल के बाद सर बता, तुम हनुमान जी की पूजा करते हो? कहाँ करता हूँ। मैंने कहा मटन शराब करता हूँ, तो मैंने कहा किसने कहा मटन और शराब पी करके हनुमान जी का, आप बताइए। पति पत्नी की लड़ाई होती कहाँ होती है, बाप से लड़ाई होती कहाँ होती है, पैसा जो जाता है वापस आता कहाँ नहीं आता। जहाँ पति पत्नी की लड़ाई हो, बाप से लड़ाई हो, पैसा जो वापस ना, वहाँ हनुमान जी की पूजा में खामी, ये उसकी पहचान है। इसलिए हनुमान जी की पूजा कर घंटा कर्ण घर में। आप बताए बिल्ली मोरा में 50 साल पहले कितना जैनी थे, आज क्योंकि ये मटन तो नहीं खाते लेकिन ये पीना शुरू। और आपको बताऊं मैं जाति पाति की बात नहीं करता, मुझे अच्छे अच्छे लोगों ने बताया है, कई बुजर खाने के मैनेजर जैनी है, सुना होगा आप लोग, मुझे तो बताया गया। ये बड़े बड़े जो होटल हैं उनके 30% जो है मैनेजर नॉनवेज वाले जैनी, और फिर कहते हैं ये हो गया वो हो गया। इसलिए आप लोगों से कहूँगा कि अगर हम हिंदू हैं, हम मुसलमान नहीं, हमारा जो संस्कार है, इसलिए आप एकांत में जिस तरह चाहे भोजन करें, लेकिन समूह में जब भोजन करें तो पहले हाथ नहीं धोएं, धोना है तो थाली उठा के रख दीजिए ताकि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन छोड़ करके। अच्छा आप थाली छोड़ दिए, मान लो आप मिष्ठान था, तो वहाँ 5 मिनट में कितनी मक्खी आ जाएंगी, आएंगे कि नहीं, कीड़ी भी आ सकती है। फिर आप ये करते हैं तो हमें तो बुरा तो लगे, तो हमारे कारण बुरा लगेगा तो ध्यान कैसे कैसे बनेगा। इसलिए एकांत में खाओ और सबके सामने खाओ तो नियम पर। एक चीज का और करना है ख्याल, अगर समूह हमारी आपकी श्वास अलग है, पहले तो है कि ध्यान अकेले में करना चाहिए खुली हवा में, लेकिन फिर भी है तो हमारे आप में 6 फुट का कम से कम अंतर चाहिए, और डूंगरी लहसुन खा के ध्यान में करो, करना है तो 6 घंटे के बाद। क्या है आपको बताएं, इसमें डूंगरी लहसुन में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अर्थात ये जो स्वामी नारायण वाले या कुछ लोग नहीं खाते तो हमारे जो डकार निकलती है वो काला होता है। एक बार अगर ऐसा होगा तो 15-20 मिनट तक उस पर्यावरण में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपकी बुद्धि को पल्यूट कर देगा, मतलब ध्यान। इसलिए उन्होंने निषेध कर दिया कि भाई अगर डूंगे लहसुन खाते हो तो कम से कम 6 घंटे के बाद आप ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो। तो इसलिए अगर ध्यान करना है तो डूंगे लहसुन का भी थोड़ा सा, और नहीं तो आप 12 बजे खा लो फिर करो शाम को, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, दुर्गंध जो आती है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा है। एक चीज का ध्यान करते और कि जब हम ध्यान करने बैठे तो जहां तक बन सके कोई ना देखे, क्यों ना बैठे, विचार के बाद हम ध्यान किए, पता नहीं उसके कैसे विचार है, वो कहेगा बगुला भगत है, तो ये शब्दों का भी असर। इसलिए एकांत में खुली जगह रहोगे तो कोई बोले, इसलिए हमारे वर्तन में किसी भी तरह किसी के अपनी तरफ से कोशिश करो कि हमारे लिए कोई गलत विचार। अब देखिए छोटी छोटी बात बताऊं, मैंने देखा है, हम तो ऐसा नहीं करते लेकिन कई जगह देखा है, बड़ा मुश्किल हो जाता। पंगत बैठ गए, कोई गरीब आके बैठा, लाओ अपना कार्ड नहीं दिखाओ तो सब सामने उठाते हैं, आपको भोजन कमी नहीं है, या तो ये कह दो कि इनको खाने दो बाद में खाइए, लेकिन जो आप उठा देते हैं वो या तो खाने दो, क्या कमी है। लेकिन कई जगह पे उठो और फिर मन पर तो असर, वो भाई तेरा करोड़पति होता तो आमंत्रण मिलता था, वो बेचारा कोई मजबूरी से आया होगा ना, कोई मजबूरी से आया। इसलिए गालिब ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी, गालिब ने इसी बात पर बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो कहता है कि मैं गया वक्त नहीं हूँ कि बुलाने पर फिर ना जाऊं, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि बुलाने फिर ना जाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी ने कुछ ऐसा किया कि आपने मुझे गलत समझ लिया। मेरी भूख लगी थी, लोग बैठे रहे थे, मजबूर था बैठ गया, तो मेरी मजबूरी को आपने गलत समझ। इसलिए किसी की मजबूरी को गलत पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है। इसलिए अमरीश जी ने कहा था ध्यान की बात, इसलिए दूसरों पर कोई ध्यान देने की जरूरत
नहीं,
हमें अपने को ठीक करना है, अपने करना है। तो अमरीश जी ये है ध्यान की व्यवहारिक शुद्धि, जैसे हमारे जैसे उन्होंने कहा सोच संतोष तप स्वाध्याय है कि नहीं, स्वाध्याय में सब आता है कि हम स्वयं शुद्ध बने, हमारे कारण कोई दुखी न हो, हमारा भोजन। अब ये देखिए हमारे रहते शमशान में है, लेकिन शंकर कड़वा क्यों कहते हैं। अब एक बार शनि आया, चाहे ये कल्पना जो शनि आया वापस जाने लगा, शंकर कहते हैं शनि क्यों वापस जा रहा है, तो आप कौन से बढ़िया चीज खाते हैं जो मैं खाने के लिए बैठूं। आप कौन सा अच्छी जगह रहते हैं जो यहाँ बैठूं, आपका कपड़ा कितना अच्छा है जो खींचूं। उसका मतलब है कि जीवन ऐसा बनाओ महादेव की तरह इतनी शक्ति हो, लेकिन हमें देख करके कोई दुखी ना हो, हमें देख, क्योंकि अगर वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है तो महादेव का देख कड़वा खा, वो खाएगा नहीं, कहा बदन इस तरह रख। तो शक्ति प्राप्त करने की तरकीब बताइए, लेकिन महादेव तरकीब बताएंगे तो मानेगा नहीं, इसलिए कोई दुख होने वाला भी नहीं। यहाँ तो यह है कि एक कपड़ा कहाँ से लाए, लंदन से लाए, तो दूसरी बार जाना तो मेरे लिए लाना, तो नहीं लाए तो बस नहीं लाए तो वो गालियां देगा। हमारे यहाँ जो गुप्त धाम की बात की गई, क्यों कहेंगे, बड़ी जगह गुप्त धाम की बात क्यों कहेंगे। चलो मैं अपने को लेता हूँ, आप लोग अच्छे हैं, आपने मुझे गुप्त दान दिया और पता चला सबको फलिया में कि स्वामी जी को इतना दान दिया, तो आएगा कहा भाई ठीक है गुरु महाराज को इतना दिया तो मुझे तो इतना दे दो, और नहीं दो तो गालियां देगा कि बाबा ने क्या मंत्र मारा है कि दे दिया। इसलिए गुप्त दान का महत्व इसीलिए कि दान देने के बाद कोई आपको गाली न दे। तो हमारे यहाँ जो है इसकी प्रथा आज पूरा विज्ञान मानता है कि बस पूछिए मत। अब यह गोदान का असर बता दूं, हम भगवान कृष्ण के पास सुदामा आए थे मांगने, नहीं मांगा तो खुश हो गया, अच्छा हुआ नहीं मांगा, लेकिन घर आए तो बहुत कुछ था, तो बड़ी समझ में बात नहीं आई। बाद में वो हंसने लगे और कृष्ण तो उनके साथी थे, सकाई थे, कृष्ण कहते हैं कि जब तूने मुझे दिया मांगा नहीं तो तूने अपनी हैसियत से दिया गुप्त, वो जो चावल लाए थे कोठरी बांधकर, तो मैंने अपनी हैसियत से दिया, अब तू कहता कि लो चावल खाओ इसके बदले में दो तो मैं भी थोड़े देता। हाँ तो एक तो गुप्त दान का मतलब, आप जमीन है, जमीन में इतना गेहूं डालते हो मतलब गुप्त, तो कितना आता है। इसलिए चाहे रिश्तेदार हो कि पड़ोसी कोई हो, भला करो लेकिन उसको बहुत जाहिर करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर कितने लोग कहे महाराज जी मेरे नाम के प्लेट लगा दो तो इतना दूंगा, मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं, अब जो लोग यहाँ दान के हिसाब करो नहीं प्रेस ऊपर थे, अब उनका कभी लड़का आ जाता कहता कि भाई इस कमरा बनवाने मेरे बाप ने 1 लाख दिया है, तो कहता महाराज जी 1 लाख का ब्याज तो दे दो क्योंकि मैं तो बहुत तकलीफ में हूँ। तो एक हजार तो इस अर्थ है कि जीवन ऐसा बनाइए कि खान पान व्यवहार से कोई हमारे लिए ईर्षा न करे, और कोई ईर्षा नहीं करेगा तो इतनी जबरदस्त शक्ति आपके पास आएगी, नहीं तो जैसे हम क्रोध करते हैं बुरा न मानिए, हमने क्रोध में किसी को कुछ बोल दिया तो जैसे आपका पैसा किसी के केस करने पर खर्च होता, तो जैसे लड़ाई कारण आपका पैसा खर्च होता ऐसे क्रोध में हमारी शक्ति भी खर्च होती, इसलिए कहते हैं जो होना तो हो गया क्रोध में करो तनाव न लाओ। तो अमृत जी है कि जीवन को इतना सरल बना दो, इतना सहज बना दो कि हमारी शक्ति का किसी तरह अभ्यय नहीं हो, अब कोई राग द्वेष न करे तो जबरदस्त अपना ध्यान बनेगा। हरि ओम तब कुछ अंगत बोलो, संगत तो क्या बनाऊँ आपके लिए मैंने अरे नहीं।